الذين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. ٹھیک ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ہم درود شریف پڑھتے ہیں سب سے پہلے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں علم نافع عطا فرمائیے, یعنی ایسا علم عطا فرمائیے, ایسی سمجھ عطا فرمائیے کہ ہم سچ میں اور جھوٹ میں فرق کر سکیں. ٹھیک ہے, ہمیں سچ سمجھ میں آ جائے کہ کیا چیز واقعی سچ ہے, اور پھر ہم اس کو فالو بھی کر سکیں. آپ ہماری مدد کر دیجئے اس کو فالو کرنے میں بھی, اور کیا چیز جھوٹ ہے وہ ہمیں سمجھا دیجئے کہ یہ چیز جھوٹ ہے, اور اس سے بچنے کی میں بھی آپ ہماری مدد کر دیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی پیاری پیاری دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ سے, اور صرف اکیلے میں نہیں مانگی, چپکے سے مانگ لیتے ہیں نا, کسی کو پتا بھی نہ چلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لی, رائٹ؟ نہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے دعائیں مانگی کہ ہم سب کو پتا بھی چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعائیں مانگی. جبھی تو ہم نے سیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی سکھا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ٹھیک ہے, ورنہ ہم تو سوچ سوچ کر کے ایسی دعائیں کبھی مانگ ہی نہیں سکتے تھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی. تو ہم ان دعاؤں کے ساتھ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. اس میں آگے کی جو باتیں ہیں ان سے پہلے پیچھے کی ایک دو باتیں ذرا بڑے مزے کی پڑھی تھیں. ایک جو تھی وہ حضرت جی ایک بندہ, ہاں وہ بھی تو وہ پیچھے کی ایک بات جو آپ کو بتانی تھی وہ یہ تھی کہ یاد ہے جب ہم مسجد نبوی کی تعمیر کے بارے میں بات کر رہے تھے, تو اس میں جب پہلی ایکسپینشن ہوئی تھی نا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خود فرمائی تھی پہلی توسیع, پہلی ایکسپینشن مسجد نبوی کی, کب ہوئی تھی پہلی توسیع مسجد نبوی کی؟ 7th ہجری, وچ واز کیا ایک میجر ایونٹ ہوا تھا, خیبر فتح ہونے کے فوراً بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کیا تھا. ٹھیک ہے, تو اس وقت پھر ہم نے پڑھا تھا نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی اینٹ رکھی, پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دوسری اینٹ رکھی, پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اینٹ رکھی, پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اینٹ رکھی, اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اینٹ رکھی. یہ عجیب, اللہ تعالیٰ نے نا اس طریقے سے اینٹیں یعنی دل میں ڈالا سب کے کہ آپ ایسے ایسے اینٹ رکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر ابو بکر صدیق, پھر عمر فاروق. جب یہ چاروں, جب یہ پانچوں حضرات اینٹیں رکھ چکے ہیں نا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا اس وقت, جو کہ حدیث کی کتاب کے اندر موجود ہے, کہ فرمایا تھا کہ میرے بعد یہی خلفاء ہوں گے. ٹھیک ہے, جنہوں نے اینٹیں جس ترتیب سے رکھی ہیں نا, جس آرڈر میں, یہی میرے بعد خلفاء ہوں گے. ٹھیک ہے, اور اس طرح کی اور بھی مزے مزے کی باتیں تھیں خلفاء کے بارے میں, جیسے کہ احد کے اوپر کھڑے ہوئے تھے تو وہاں پر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ, وہاں پہ بھی اس طرح کی باتیں ہوئی تھیں. اچھا, ایک تو یہ بات ہو گئی, اور دوسری بات جیسے کہ ابھی فرحان صاحب نے یاد بھی دلائی کہ پچھلی کلاس میں ہم آخری جو بات کر رہے تھے وہ تھی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث, کہ وہ پہلے تو عیسائی تھے, اگرچہ کہ عرب ہی تھے, بیکاز عربز جو تھے ان میں پہلے بت پرست بھی لوگ ہوتے تھے, مشرکین, رائٹ, ان میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ کرسچنز بھی ہوتے تھے عربز میں. ٹھیک ہے, آج بھی بہت سارے عرب کرسچنز دنیا میں رہتے ہیں, سیریا کے اندر بہت سارے عرب ایسے ہیں جو کہ کرسچنز ہیں, مسلمان نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ بھی اللہ کو اللہ ہی کہتے ہیں, گاڈ نہیں کہتے. ٹھیک ہے, کیوں؟ اس لیے کہ وہ عربی ہیں, اور اللہ کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے, اور اللہ تعالیٰ کا نام ہے اللہ. ٹھیک ہے, تو وہ کرسچنز بھی اللہ کو اللہ ہی کہتے ہیں, کچھ اور نہیں کہتے. بہرحال, تو تمیم داری رضی اللہ عنہ جو تھے یہ عیسائی تھے, اور یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے, پر سفر کرتے ہوئے طوفان میں گر گئے, اور پھر وہ ایک جزیرے پہ پہنچ گئے. جزیرے کے اندر ان کو جو ہے وہ کیا نام تھا اس کا, وہ جو عجیب سی مخلوق تھی, جساسا نظر آیا, اور پھر جساسا نے ان کو پوائنٹ کیا, ادھر چلے جاؤ, وہاں پر ایک تمہارا انتظار کر رہا ہے. تو وہ ساری ڈسکشن ہوئی تھی. تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات تھی کہ وہ لوگ پھر ایونچولی سفر کرتے 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 مدینہ منورہ پہنچ گئے. ठीक है, तो मदीना मुनव्वरा जब ये पहुंचे ना, तो तमीम दारी रजरा तारन जो है वो कहीं से रास्ते से जो है वो कुछ चीजें इकट्ठी करके ले आए मदीना मुनव्वरा। ठीक है ना, अल्लाह ने उनके दिल में डाला या उनको पता था कि मदीना मुनव्वरा में जरूरत है, क्या चीजें लेकर के आए? हाँ माशाल्लाह, राइट, वो लेकर के आए जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल। ठीक है, और साथ साथ जो है ना वो पुराने जमाने के जो लैंप्स होते थे ना, कंदीले जिनको कहते थे, ठीक है ना, पुराने जमाने में इलेक्ट्रिसिटी तो इजाद नहीं हुई थी, तो वो लैंप्स होते थे जिनके अंदर जो है वो तेल डाल करके फिर उसके बाद उसमें कुछ जो है वो रस्सियां डाल देते थे और रस्सियों को जला देते थे, ये पुराने जमाने के लैंप्स। ठीक है, आजकल इनको दिया भी कहते हैं, दिया। सही, तो वो ये सारी चीजें लेकर के आए, तो मस्जिद नबवी उस वक्त बन चुकी थी, लेकिन मस्जिद नबवी में लाइटिंग का कोई इंतजाम नहीं था। ठीक है, तो रात के वक्त जो है वो अंधेरा हो जाता था, तो सहाबा ने शुरू में क्या किया कि जो खजूरों के जो जो, जो पत्ते वगैरह होते थे ना, तो उनको जला करके थोड़ी सी रोशनी कर ली। लेकिन अब वो खजूर के पत्ते कितनी देर तक जले रहेंगे, वो तो फिर जल के खत्म हो जाएंगे, और उनको संभालना भी बड़ा मुश्किल होता है कि इनकी आग कहीं फैल ना जाए, कहीं पूरी मस्जिद में आग ना लग जाए। ठीक है, तो ये अच्छा तरीका नहीं था, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं था इनके पास। तो तमीमदारी रजना ताना जब मदीना मुनव्वरा आए ना, तो वो अपने साथ कंदीलें और रस्सियां और ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल साथ लेकर के आ गए, और फिर उन्होंने जो है ना उन तब्दीलों को मस्जिद के अंदर बाकायदा ऐसे छत से जो है ना वो टांग दिया, और उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने सबसे पहले पहली कंदील को जलाया और उसके अंदर से रोशनी हो गई, फिर इस तरीके से मस्जिद के अंदर लाइटिंग का इंतजाम हो गया। इनको चिराग भी आप कह सकते हैं। ठीक है, पुराने जमाने में ना ये जो स्ट्रीट लाइटिंग होती थी ना, जैसे हमारे यहाँ बड़े बड़े पोल्स लगे हुए होते हैं सड़कों के ऊपर, उन पोल्स के ऊपर, तो उस जमाने में इसी तरीके से दरख्त की कोई तना खड़ा कर देते थे और उनसे जो है ना वो इसी तरह के लैंप्स जो है वो लटका दिया करते थे। ठीक है, तो यही उस जमाने की स्ट्रीट लाइटिंग होती थी। ठीक, अच्छा, ये चीज आपके सामने बयान हो गई पिछ पीछे से। और एक और आखिरी बात पीछे की, वो ये कि एक सहाबी थे हजरत हारिसा रजी अल्लाह तआला अन्हु, इनको अल्लाह ताला ने अच्छा माल पैसा वगैरह दिया था, इनके पास दौलत थी, तो इनके जो है ना बहुत सारे छोटे छोटे मकानात थे। ठीक है, और ये मकानात मस्जिद नबवी के चारों तरफ थे इनके, यानी इतने माशाल्लाह अमीर थे और इनके पास इतने पैसा था और घर भी थे कि मस्जिद नबवी के चारों तरफ इनके छोटे छोटे मकानात थे। ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको खाली माल नहीं दिया था, बल्कि अल्लाह ताला ने इनको खूब सारी तौफीक भी दी थी, यानी दीन का जज्बा, अमल करने की तौफीक भी दी थी। तो ये क्या करते थे कि नबी अलैहिस्सलाम को, जैसे आपको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना वो मल्टीपल शादियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई थी, अजवाज मुतहरात की टोटल तादाद कितनी है, कितनी औरतों से, 11 औरतों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी करी। ठीक है, तो दो का तो इंतकाल हो गया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, किन का? हजरत हदीयतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो गया था बिल्कुल पहले ही। ठीक है, और एक और थी जिनका भी इंतकाल हो गया था, एक और थी हजरत जैनब बिनते खुजैमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का, उनका भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में इंतकाल हो गया था। तो 11 में से दो का इंतकाल हो गया, तो कितनी बच गई? 9 बच गई। ठीक है, तो 9 अजवाज जो है ना नबी अलैहि सल्लम की जिंदगी के अंदर मौजूद थी। तो उनके लिए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी से शादी होती थी, तो हजरत जैद, ये जो हारिसा रजी अल्लाह ताला थे ना, हारिसा, ये अपना एक घर जो है नबी अलैहि सल्लम को हदिया कर देते थे, अल्लाह के नबी आपकी जो अब ये बीवी आई हैं तो उनको आप इस वाले घर के अंदर रखें। ठीक है, तो जितने इनके घर थे ना, वो एक एक करके इन्होंने सारे नबी अलैहिस्सलाम को दे दिए। ठीक है, तो वो सारे घर जो है वो अजवाज मुतहरात के गुजरात बन गए, और माशाल्लाह फिर बाद में उनको फिर मस्जिद नबी के अंदर शामिल भी कर दिया गया। जी, चार शादियों से ज्यादा की जो हद अल्लाह ताला ने लगाई है ना, वो नबी अलैहि सलाम के उम्मतियों के ऊपर लगाए। ठीक है, नबी अलैहि सलाम के ऊपर ये लिमिट नहीं थी। ठीक है, तो ये उन खसूसियात में से है जो नबी अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने दी है। ठीक है, कि वो चार से ज्यादा शादियां, अच्छा, उसकी बहुत सारी हिकमतें हैं, बहुत सारी रीजंस हैं कि नबी अलैहि सलाम ने इतनी सारी शादियां क्यों करी। ठीक है, एक तो सीधी सी बात है कि नबी अलैहि सलाम जो भी करते थे वो अल्लाह के हुक्म से करते थे, अपनी मर्जी से तो करते नहीं थे कि दिल चाह रहा है जी शादी कर लेना तो चलो जी शादी कर ले। ठीक है, अल्लाह का हुक्म होता था, सबसे पहली बात तो यही हो गई। एक और बहुत अहम बात ये भी है कि नबी अलैहि सलाम की जो पहली शादी हुई थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या एज थी उस वक्त, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली शादी करी थी? 25, 25 साल, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल के थे? 25, 25, ठीक है। और किससे शादी करी थी? हजरत हदीयतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से शादी करी थी। उनकी कितनी उम्र थी उस वक्त? 40, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम सलाम थे 25 ईयर्स के और खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी 40 साल की, ठीक है ना। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 15 साल बड़ी थी, ठीक है। अच्छा, खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है नबी अलैहिस्सलाम सलाम के साथ कितना अरसा जिंदा रही, शादी के बाद कितना दिन जिंदा रही? 2 साल, पता नहीं जिंदा रही, ठीक है। खदीजत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये भी कैलकुलेशन मुझे भी करनी पड़ेगी, कोई कोई अच्छे मैथमेटिशियन हो तो वो करके बता दे। 25 ईयर्स, सही कह रहे हैं, 25 ईयर्स, क्योंकि उनका इंतकाल हुआ था नबूवत के 10वें साल में, ठीक है। और नबी अलैहिस्सलाम उस वक्त कितने साल के थे? 50 ईयर्स के थे, ठीक है ना। तो 25 ईयर्स में शादी हुई और 25 ईयर्स जो है वो आप फिर खदीजतुल कुबरा के साथ रहे, और खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला का इंतकाल हुआ तो उस वक्त उनकी एज कितनी होगी? 65 हो चुकी थी, ठीक है। तो इतने साल, 25 साल नबी अलैहिस्सलाम सलाम अपने से 15 साल बड़ी औरत के साथ रहे, ठीक है ना। वो बूढ़ी हो चुकी थी ना, 65 ईयर्स, दादी होती है 65 ईयर्स की, दद्दा नन्ना 65 ईयर्स की होती है ना। तो वो 65 ईयर्स की हो गई थी, नबी अलैहिस्सलाम ने एक और शादी नहीं करी, किसी और से शादी नहीं करी, ठीक है ना। और इन्हीं के साथ नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी सारी जवानी का वक्त गुजार दिया, है ना। जवानी का टाइम क्या होता है? जिसमें जरा फन करने का दिल चाहता है, जरा हनीमून मनाने का दिल चाहता है, जरा सैर सपाटे, राइट, मजे 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 करें जी, जरा घूम फिर करके आए और खूब जो है वो अच्छी अच्छी पार्टीज करें और है ना तफरी करें। नबी अलैहिस्सलाम की जितनी जवानी थी सारी की सारी कब खत्म हो गई? एक खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 15 साल बड़ी थी, राइट। तो बेसिकली इन सम वेज कह सकते हैं कि जो जिस चीज को हम फन कहते हैं, फन एंड एंटरटेनमेंट, हम जिस चीज को कहते हैं, नबी अलैहिस्सलाम सलाम हैड नो फन, ठीक है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड नो फन, नो मजे, ठीक है ना। वैसे तो फन तो बहुत हुआ, मजे तो बहुत हुए, लेकिन हम उसको मजा समझते नहीं है। असल मजे क्या होते हैं? आखिरत के मजे होते हैं। दुनिया में असल मजे क्या होते हैं? दुनिया में असल मजे क्या होते हैं? खेलना कूदना, या जो है वो अच्छे अच्छे जो है वो ट्रैवल्स करना, ठीक है। नहीं, ये तो कर लिया तो अच्छी बात है, कर लिया ठीक है भाई, ठीक है। लेकिन असल मजा क्या होता है दुनिया का? नहीं, जरा दुनिया की बात कर रहे हैं। दुनिया के अंदर असल मजे क्या होते हैं? कोई आप ऑनलाइन तो बता सकते हैं? जन्नत की तैयारी करना? नहीं, इसको तो आप बच्चे कहेंगे बोरिंग बातें कर रहे हैं आप, फिर भी नहीं। दुनिया के अंदर मजे, दुनिया के अंदर मजे क्या होते हैं भाई, पता होना चाहिए ना आप। बहुत बोरिंग बात है, बात है। दुनिया के मजे ऐश इशरत होते हैं, असल मजे। पहले जो बात हो चुकी है ना, वो हर वक्त या आप यानी सफर करते रहें, मजे मजे के आप यानी ट्रैवल करते रहें, कभी कहीं कश्मीर चले जाएं, कभी स्विट्जरलैंड चले जाएं, कभी जो है वो डिज्नी वर्ल्ड चले जाएं, कभी जो है वो किसी और जगह चले जाएं, इसको हम लोग मजे कहते हैं, ठीक है। लेकिन असल मजे दुनिया के क्या होते हैं? असल मजे ये होते हैं कि इंसान खुश रहे, जो अल्लाह ताला ने उसको दिया है ना उसके अंदर इंसान खुश रहे, ठीक है, सुकून से रहे, उसका दिल जो है वो मुतमईन हो, परेशानी का शिकार ना हो, ठीक है ना। टेंशन कैसे समझते हैं? टेंशन क्या होती है? टेंशन का शिकार ना हो, ठीक है। ये टेंशन का जो शिकार होता है ना, ये जो चाहे वो उसके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी मौजूद हैं, है ना, और हर वक्त जो है वो कभी लंदन भागा चला जा रहा है, कभी न्यूयॉर्क भागा चला जा रहा है, कभी जो है वो ऑस्ट्रेलिया भागा चला जा रहा है, कभी कहीं भागा चला जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि पैसे इतने सारे हैं उसके पास, ठीक है ना। और जो है वो बड़े मजे मजे की जो है वो चीजें खरीद करके खाया चला जा रहा है, खाया चला जा रहा है, ठीक है। और जो है वो अरे जब बड़ी महंगी सी गाड़ी के अंदर है ना, बड़ी महंगी सी गाड़ी के अंदर जो है वो इधर से उधर भागा चला जा रहा है, ठीक है, लेकिन अंदर से टेंशन, ठीक है, अंदर से डिप्रेशन, ठीक है, एंग्जाइटी, गोलियां भी भागे चला जा रहा है, गोलियां खाए चला जा रहा है, किसी तरीके से मेरी टेंशन खत्म हो जाए, मेरी डिप्रेशन खत्म हो जाए, रात को सोने के लिए लेटता है नींद ही नहीं आती, है ना, हर वक्त की टेंशन दिमाग के अंदर घुसी हुई है, परेशान हुआ हुआ है, परेशान हुआ हुआ है, ठीक है। तो भाई आपके इतने मजों का क्या फायदा आपको, वो मजे तो ऊपर से देखने को मजे लग रहे हैं, अंदर से तो आपको कोई मजे नहीं आ रहे ना, ठीक है ना, तो ऐसे मजों को कोई फायदा है? हाँ भाई दाऊद साहब, कोई फायदा है ऐसे मजों का कि आप हर वक्त डिप्रेशन और टेंशन के अंदर उबला रहे हैं, ठीक है, ऐसे कोई मजों का तो कोई फायदा ही नहीं है ना, ठीक है ना। तो जिस शख्स को पैसे नहीं अवेलेबल है उसके पास जो है वो ट्रैवलिंग की अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ठीक है ना, उसके पास बड़े कपड़े लत्ते इस किस्म की चीजें नहीं है, महंगी गाड़ियां नहीं है, लेकिन अंदर से वो खुश है, अपनी बीवी के साथ मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजार रहा है, बच्चों के साथ मोहब्बत वाली जिंदगी गुजार रहा है, ठीक है ना, ये शख्स जो है वो दुनिया में रहते हुए जन्नत के मजे कमा रहा है, ऐसे शख्स को दुनिया में जन्नत के मजे मिल रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि जन्नत के अंदर कोई टेंशन नहीं होगी, कोई डिप्रेशन नहीं होगी, ये बंदा दुनिया के अंदर जो है बगैर टेंशन वाली जिंदगी गुजार रहा है ना, तो ये है असल मजे। बात समझ आ रही है जी? ऑनलाइन माशाल्लाह जवाब दिया था, टू फुलफिल डिजायर्स, नहीं, नॉट टू फुलफिल डिजायर्स तो नहीं कहते उसको, हैप्पीनेस, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दिया था, हैप्पीनेस विद योरसेल्फ एंड विद द फैमिली, ठीक है ना, शुक्र अदा करना, खुश रहना, ये असल चीज है। और नबी अलैहिस्सलाम जो 25 साल खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ रहे, खुश रहे, विदाउट एनी टेंशन ऑफ द दुनिया, ठीक है, तो ये होती है असल चीज, सही है। तो ये बात याद रखिएगा, क्योंकि आजकल हिंदुओं को भी बड़े मजे आ गए, पहले तो गोरे इस तरह की हरकतें करते नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर, उन्होंने इतनी सारी शादियां क्यों करी, और इनको तो शादियां करने का शौक था, नाउज बिल्ला, राइट, ऐसी बातें करते थे, अब ये भी शुरू हो गए, ठीक है ना, इनको खाना पीना भी नहीं आता इनको, तो है क्या गंदी गंदी चीजें खाते फिरते हैं, ये भी नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर एतराज नहीं, उन्होंने क्यों इनसे शादी क्यों करी थी और इतनी शादियां क्यों करी थी। तो यू शुड नो कि नबी अलैहिस्सलाम की शादियों की हकीकत क्या है, ठीक है ना, वरना आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे और आप खुद ही परेशान हो जाएंगे कि हाँ क्यों क्यों भैया, तो मुझे तो समझ में नहीं आता ये इतनी सारी शादियां क्यों करी, क्योंकि इल्म नहीं होता ना, तो हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, हम खुद डाउट करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एक आदमी है, वो अपना किस्सा बताते थे कि यूनिवर्सिटी पढ़ने के, यानी उन्होंने कॉलेज वगैरह पढ़ा, खूब तालीम हासिल करी पाकिस्तान के अंदर, फिर उसके बाद ना वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए वहां चले गए, यूके चले गए, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो कहते हैं कि मैं यूनाइटेड किंगडम जाने के लिए जब जहाज में बैठा ना, ठीक है, तो मेरे बराबर में जो है ना वो एक क्रिश्चियन लड़की आके बैठ गई, ठीक है, अब जो है वो उसके साथ मैंने बातें शुरू कर दी, क्योंकि इनको दीन वीन का तो कुछ पता नहीं था, राइट, और पर्दा करना, नामहरम औरतों से बात करना जायज नहीं है, ये सारी चीजें इनको नहीं पता थी, इन्होंने उस क्रिश्चियन लड़की से बातें करनी शुरू कर दी। कहते हैं उस क्रिश्चियन लड़की ने ना फौरन ही मुझे कहना शुरू कर दिया, देखो तुम्हारे नबी ने कितनी सारी शादियां करी थी, है ना, देखो तुम्हारे नबी ने जो है वो इस लड़की से शादी करी जब इतनी छोटी थी, और ऐसे शादी करी और वैसे शादी की, वो तो नाउज बिल्ला हर वक्त शादियां ही करते रहते थे। कहते हैं उस लड़की ने मुझे ऐसी बातें बोली कि मैं तो नबी अलैहिस्सलाम का दुश्मन हो गया, राइट, पाकिस्तान में पैदा होने वाला मुसलमान आदमी कहता है कि मैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन बन गया, और जब मैं यूके के एयरपोर्ट के ऊपर लैंड कर रहा था ना, मैं उस वक्त काफिर हो चुका था, मैं आई हैड ऑलरेडी लेफ्ट इस्लाम, मैं मुसलमान इस्लाम छोड़ चुका था मैं उस वक्त। फिर कहते हैं मैं 8 साल तक यूके के अंदर काम करता रहा और मैं काफिर ही रहा, किसी को पता ही नहीं चला कि मैं काफिर हो चुका, क्योंकि नाम तो मुसलमान था, ठीक है, और वो वैसे भी कौन सा मुसलमान नमाज पढ़ता है, वो नमाज उसको नहीं पढ़ता था, ठीक है ना, किसी को पता ही नहीं चला कि मैं तो काफिर हूं असल में। फिर कहते हैं फिर मैं 8 साल वहां पे जॉब करने के बाद वापस पाकिस्तान आया, और फिर मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो पढ़ाना शुरू किया, एक दिन जो है ना उस यूनिवर्सिटी के अंदर मुसलमान जो नेक बच्चे थे ना, नेक लड़के थे, उन्होंने एक प्रोग्राम किया सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, ठीक है ना, उस क्योंकि मैं उस यूनिवर्सिटी का एक टीचर था, तो मुझे भी इनविटेशन आई कि भाई आप भी आए इस प्रोग्राम के अंदर, मुझे भी जाना पड़ा उस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। तो जब मैं उस प्रोग्राम में गया ना, तो वहां पर जो तकरीर करने वाले थे, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की शादियों के बारे में खूब सारी बातें करी, कि आप ससुराम ने क्यों शादी करी, किससे क्यों शादी करी, क्या हिकमत थी। और यही बातें जैसे अभी आपने सुनी ना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ 25 ईयर्स जो है नबी अलैहिस्सलाम एक ही राइट सारी जवानी खत्म कर दी थी। ठीक है ना, कहते हैं उस बयान को सुनने के बाद मैंने फिर से कलमा पढ़ा और मैं फिर से मुसलमान हो गया। राइट, तो इतना अहम है इन बातों को जानना, वरना काफिर तो काफिर, हम खुद ही काफिर हो जाएंगे। है ना, अल्लाह ताला सबकी ईमान की हिफाजत फरमाए। ठीक है, तो अच्छा फिर उसके बाद हमने जो आपको आखिरी दफा एक दो हदीसें बताई थी मदीना मुनव्वरा के फजाइल के बारे में, ठीक है ना, तो उनमें से वो वाली भी थी कि दज्जाल जो है वो मदीना मुनव्वरा के अंदर दाखिल नहीं होगा। तो तमीम दारी रजदान की भी हदीस फिर इस तरह से आपको सुना दी थी सारी तफसील। अच्छा, इसके बाद जो है ना वो एक और बात आपको बता देते हैं जो कि अगरचे कि इस वाली किताब के अंदर है भी नहीं, वो ये थी कि नबी अलैहिस्सलाम ने इन सब कामों से फारिग होकर के फिर जो मदीना मुनव्वरा में ज्यूज रहते थे, यहूदी कबाइल, ठीक है, तो उनमें से 3 यहूदी यानी एक से ज्यादा कबीले थे उनके, काफी सारे ना उनके फैमिली, बड़ी बड़ी फैमिली उसको कबीले कहते हैं, ठीक है ना, तो 3 कबीले थे कि जिनके साथ नबी अलैहिस्सलाम ने बाकायदा एक पैक्ट कर लिया, एक एग्रीमेंट मुआहिदा कर लिया। ठीक है, क्या मुआहिदा किया, क्या एग्रीमेंट किया उन 3 यहूदी कबीलों के साथ, ठीक है, वो ये किया कि हम आपकी हिफाजत करेंगे, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा आने के बाद एक इस्लामिक गवर्नमेंट बना ली थी। ठीक है, मदीना की रियासत जो असल मदीना की रियासत थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बना ली थी। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम वाज द लीडर, द अमीर ऑफ दैट रियासत, और बाकी जो मुसलमान थे वो नबी अलैहिस्सलाम के सोल्जर्स थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिनिस्टर्स थे, पूरा एक गवर्नमेंट बन गई थी वहां पर। ठीक है, एक मुल्क बन गया था इस्लामी। तो अब जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है वो एक फिजिकल पावर भी थी, क्योंकि आर्मी मौजूद थी, लोग लड़ने के लिए मौजूद थे, हिफाजत करने के लिए मौजूद थे। तो जो बाहर के जो ज्यू ट्राइब्स थे तो उनके साथ फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एग्रीमेंट किया कि भाई हमारे पास भी हथियार हैं, हम भी जरा स्ट्रांग हो चुके हैं, तो हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे आपके दुश्मनों से, अगर किसी दुश्मन ने आप पे अटैक किया वी विल कम टू योर हेल्प, हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है, इसके बदले में आप क्या करेंगे कि अगर किसी दुश्मन ने, हमारे दुश्मन ने हमारे ऊपर अटैक किया तो आप हमारी मदद करेंगे। ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे जब यू आर इन नीड, और आप हमारी मदद करेंगे व्हेन वी आर इन नीड। ठीक है जी, आप पूछ रहे हैं मिनिस्टर्स कौन थे, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक है, और भी दूसरे जो बड़े बड़े सहाबा थे वो भी जो है वो नबी अलैहिस्सलाम को एडवाइजेस दिया करते थे गवर्नमेंट के मामलात के अंदर, सबसे इम्पोर्टेंट ये दोनों थे। हाँ माशाल्लाह, तमीमदारी अतान के बारे में एक और बात भी थी कि आप जब ये कंदीलें लैंप्स वगैरह लेकर के आए ना और उन्होंने मस्जिद नबी को रोशन कर दिया तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको बड़ी दुआएं दी, बहुत खुश हुआ आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया कि तुमने जो है वो अल्लाह के घर को यहाँ रोशन किया है और तो अल्लाह ताला तुम्हें इस तरीके की रोशनी जो है ना जन्नत के अंदर अता फरमाया। ये भी फरमाया और ये भी फरमाया कि अगर मेरी एक और बेटी होती है ना तो मैं तुम्हारी उनसे शादी कर देता, ठीक है ना, लेकिन अब जो थी वो चारों की शादी हो चुकी थी। ठीक है, अच्छा तो हाँ, एक तो यानी जो एग्रीमेंट किया ना वो ये कि हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे जब कभी कोई दुश्मन अटैक करे, दूसरा ये कि हम आपस में जंग नहीं करेंगे, ठीक है ना, ना तुम हमारे ऊपर अटैक करोगे ना हम तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे। ठीक है, और ये कि जो हमारे दुश्मन है तो तुम उनकी मदद नहीं करोगे, उसी तरह जो तुम्हारे दुश्मन है हम उनकी मदद नहीं करेंगे। ठीक है, बस वही सारी बातें कि वी विल लिव इन पीस। ठीक है ना, अब ये लोग कौन थे जिनके साथ नबी अलैहिस्सलाम ने ये एग्रीमेंट किया, मुआहदा किया, यहूदी थे। ठीक है ना, और ये यहूदी जो थे वो नबी अलैहिस्सलाम के एक तरह से दुश्मन थे, बहुत बड़े दुश्मन थे। ठीक है ना, कितना इनको हसद था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कितना नबी अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते रहते थे, दुश्मन भी थे ये, काफिर भी थे, राइट, काफिर थे ना, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम को मानने से उन्होंने इनकार कर दिया था तो इस वजह से वो काफिर हो गए थे। ठीक है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने इन काफिरों के साथ एग्रीमेंट किया, पीस एग्रीमेंट काफिरों के साथ भी किया, ठीक है ना, इस्लाम के दुश्मनों के साथ भी किया। ठीक है, अब इस पीस एग्रीमेंट का मतलब क्या ये था कि नबी अलैहिस्सलाम ने उनके दीन को सच्चा मान लिया कि हाँ भाई ठीक है तुम्हारा दीन भी सच है और हमारा दीन भी सच है, क्या ये मतलब है इसका? राइट, क्या नबी अलैहिस्सलाम ने इस उन लोगों को ये कह दिया कि तुम जो है वो अब जो तुम्हारे गंदे काम होंगे हम उनको कहेंगे कि ये अच्छे काम है, अब तुम्हारे हर गंदे काम को हम अच्छा काम कहना शुरू कर देंगे? राइट, क्या आपसे सर ने ये किया? नहीं किया। ठीक है, उनका कुफर कुफर ही रहा, वो मुसलमान तो नहीं हो गए थे। मुसलमान अगर हो जाते तो एग्रीमेंट की जरूरत पड़ती, एग्रीमेंट कोई जरूरत नहीं थी, वो तो काफिर रहे, ठीक है ना, अपने कुफर के ऊपर कायम रहे और जो वो झूठ बोलते थे जो गंदे काम किया करते थे वो करते रहे, ठीक है ना। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम से उन्होंने जो अलैहिस्सलाम ने उनके साथ जो एग्रीमेंट किया था वो एग्रीमेंट सिर्फ इन बुनियादों पर था। उसकी क्या डिटेल्स क्या थी कि दुश्मन को मदद नहीं करोगे, हम इन तुम्हारे दुश्मन की मदद नहीं करेंगे, हम तुम पर अटैक नहीं करेंगे, तुम हम पर अटैक नहीं करोगे, ठीक है, और अगर हमारे दुश्मन ने हम पर अटैक किया तो तुम हमारी मदद करोगे। राइट, इसको कहते हैं काफिरों के साथ कोई एग्रीमेंट कर लेना, ठीक है ना। ये नबी अलैहिस्सलाम ने किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काम करते थे क्या वो अल्लाह की मर्जी के बगैर कर लेते थे? नहीं, अल्लाह की मर्जी शामिल होती थी, बल्कि अल्लाह के हुक्म पर ही काम करते थे ना ये सारे के सारे, ठीक है। क्या पता चला कि अल्लाह ताला का हक था कि आप काफिरों के साथ कोई बात ना करें, क्योंकि काफिर जो है वो अल्लाह ताला का इनकार कर रहे हैं, काफिर जो है वो अल्लाह के दीन का की मुखालफत कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने इस हक को जो है ना वो छोड़ दिया, ठीक है ना, कि भाई बेशक ये मेरे दीन का इनकार कर रहे हैं, मेरे नबी का इनकार कर रहे हैं, लेकिन इन काफिरों के साथ जो है ना तुम पीस एग्रीमेंट कर सकते हो, और इनके साथ मिल करके जो कॉमन बातें जो कि तुम्हारे हक में भी हैं, तुम्हारे फायदे की भी हैं और उनके फायदे की भी हैं, तुम इनके ऊपर आपस में एग्रीमेंट कर सकते हो। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो जब नबी अलैहिस्सलाम ने करके हमें दिखा दिया कि ऐसा आप नॉन मुस्लिम्स के साथ कर सकते हैं, तो इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बाद जो बाद में मुसलमान लीडर्स आए या उलमा आए, जो कि उलमा भी तो लीडर्स ही होते हैं कौम के, ठीक है ना, तो उन्होंने भी फिर ऐसे लोग एग्रीमेंट्स किए कि जो कि गंदे लोग थे, गंदे काम करने वाले लोग थे, ठीक है ना, गंदे काम करने वाले लोग थे। शिर्क से ज्यादा गंदा कोई काम हो सकता है? कुफर से ज्यादा कोई गंदा काम हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। तो कुफर करने वाले लोग थे, उनके साथ मुसलमानों ने बाद में भी एग्रीमेंट्स किए, ठीक है ना। लेकिन ये जो एग्रीमेंट्स होते हैं ना, ये एग्रीमेंट्स कुछ पॉइंट्स के ऊपर होते हैं कि हम तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेंगे, तुम हमारे ऊपर हमला नहीं करोगे, ठीक है ना, तुम की मदद नहीं करोगे, तुम हमारे दुश्मन की मदद नहीं करोगे, बस इस बेसिस पर होते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि तुम बड़े अच्छे हो, तुम नेक बन गए हो, राइट, अब तुम भी जन्नत में जाओगे, है? इसका मतलब हरगिज ये नहीं होता कि तुम भी जन्नत में जाओगे, ठीक है ना, बात समझ रहे। यानी इस एग्रीमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप उनके कुफर को अब जो है वो इस्लाम कहना शुरू कर दें, आप उनकी बुराई को जो है वो अच्छाई कहना शुरू कर दें, ये इसका मतलब नहीं होता, ठीक है ना। इसी तरीके से आज भी ना हम अपने बड़े बड़े उलमाओं को देखते हैं, ठीक है ना, हर बच्चा तो छोटा नहीं है ना, बड़े बच्चे भी उनको कुछ समझ में आ रहा होगा, और कुछ माशाल्लाह काफी बड़े बच्चे भी हैं, है? तो उनको ज्यादा समझ में आ रहा होगा, यानी बड़े लोग माशाल्लाह, ठीक है। तो हमारे बड़े बड़े उलमा आज भी ऐसे लोगों के साथ मिल करके काम करते हैं, उनके साथ एग्रीमेंट करते हैं जो कि बहुत गुनहगार लोग हैं, जो कि बहुत ज्यादा इस्लाम के बल्कि दुश्मनी है एक तरह से, ठीक है ना, लेकिन दे डू दीज एग्रीमेंट्स। अब उसके ऊपर जो बेचारे हमारे जैसे इनको कुछ पता वता कुछ नहीं होता, इल्म नहीं होता हमें, सीरत का भी इल्म नहीं होता, शरीयत का भी इल्म नहीं होता, अब हम कहते हैं ये मौलाना साहब जो है ना इन्होंने गंदे लोगों के साथ कैसे एग्रीमेंट कर लिया भाई, है ना, ये गंदे लोगों के साथ खड़े होकर के क्यों बातें कर रहे हैं, ये गंदे लोगों से हाथ क्यों मिला रहे हैं, ये गंदे लोगों के साथ जो है ना वो मुस्कुरा के बात क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना, इसका मतलब है ये खुद भी गंदे हो गए, है भाई, बात समझ आ रही है। हम कहते हैं जी ये गंदे लोगों के साथ खड़े होकर हाथ मिला रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये भी गंदे हो गए। नहीं, अगर खुदा ना खास्ता अगर हम ये सोच रहे हैं तो फिर तो नाउज बिल्ला सुम्मा नाउज बिल्ला, हम नाउज बिल्ला ये भी कह रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जो है वो आपसे सल्लम ने भी गलत काम किया, ये हम कहना चाह रहे हैं। इसका मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलत काम नहीं किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो करते थे वही तो सही काम था। वेयर डू यू गेट दीज डेफिनेशन फ्रॉम के सही काम क्या होता है गलत काम क्या होता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम से हमें पता चलता है कि ये सही काम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज को गंदा कहा उसको गंदा गंदा काम है, ठीक है ना। ये है डेफिनेशन सही और गलत की, ठीक है। तो इस वजह से ना उलमा को अगर हम देखें कि वो किसी बहुत ही गंदे बुरे इंसान के साथ जो है वो बात कर रहे हैं और उनके साथ मिलकर कुछ काम कर रहे हैं ना, हम उलमा के बारे में ये गलत फहमी में शिकार ना हो जाए कि इसका मतलब ये है कि उलमा भी गंदे हो गए हैं। उलमा गंदे नहीं हो गए और शायद गंदे नहीं हो गए, ठीक है ना, बल्कि वो इस वजह से उन लोगों के साथ कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने सीखा है कि आप यहूदियों जैसे, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या नहीं हमें बताया मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? यहूद और मुशरिकीन। अल्लाह ताला ही कुरान के अंदर हमें बता रहे हैं यहूदी सबसे बड़े दुश्मन है मुसलमानों के, और इन्हीं यहूदियों के साथ जो है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एग्रीमेंट कर। सारी बातें सोचने की हैं, वी शुड थिंक अबाउट दीज थिंग्स वेरी केयरफुली, वी शुड नो दीज थिंग्स, ठीक है। अच्छा, गर्मी भी आ रही है, इसको थोड़ा सा इसको बंद कर। तो अच्छा, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो यहूदियों के इन तीन कबीलों के साथ ये एग्रीमेंट कर दिया। अच्छा, उन्होंने सवाल किया है कि वाज इन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑन द अपर हैंड व्हेन मेकिंग द पैक्ट विद द ज्यूज? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज नहीं, अपर हैंड तो आप नहीं कह सकते ना, ये तो इक्वल टर्म्स के ऊपर वायदा हुआ था, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर दिया था, वही तो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके उनको नेक कहना नहीं शुरू कर दिया था, उनके कुफर को जो है वो इस्लाम कहना नहीं शुरू कर दिया था, ठीक है ना। और इसी तरीके से अपने इस्लाम को जो है वो ये नहीं कि भाई मैं आइंदा से मैं झूठ बोल दिया करूंगा, आइंदा से मैं सच नहीं, बल्कि क्योंकि आप अब मेरे आपके साथ मेरा एग्रीमेंट हो गया है ना, तो अब जो है ना मैं आपको खुश करने के लिए कभी हमारे यहाँ भी जरा म्यूजिक शुजिक हम भी जरा कभी म्यूजिक म्यूजिक वगैरह, ताकि आप खुश हो जाए ना, आप हमारे आप क्या कहते हैं उसको जिनके साथ मुआहदा होता है पार्टनर हो गए, ठीक है ना। तो अब आपको खुश करने के लिए कभी हम भी जरा डांस वांस कर लिया करेंगे हम भी जरा म्यूजिक व्यूजिक कर लिया करेंगे, ठीक है ना, हम भी जो है वो कभी फिल्म शिल्म वगैरह देखा करेंगे आप, है ना, ठीक है। नहीं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, ठीक है ना, अपने दीन को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, अपने प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लेकिन एग्रीमेंट किया, ठीक है ना। इसको आप अपर हैंड नहीं कह सकते, लेकिन इसको ये कहेंगे कि आप लोअर हैंड पर भी नहीं थे, राइट, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब होता है आप अपने आप को आपने खराब कर दिया, ठीक है ना। इसको इक्वल टर्म्स के ऊपर मुआहदा करेंगे, तो हमारे उलमा भी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह इक्वल टर्म्स के ऊपर मुआहदा करते हैं। ये नहीं कि जी अब हम अपने मदारिस के अंदर जो है ना थोड़ा सा मूवी शूवी भी चला दिया करेंगे ताकि जिनके साथ हमने मुआहदे किया वो जरा खुश हो जाए, और काफिरों के साथ मुआहदा किया है तो अब हम भी जरा पैंट कोट पहन करके आया करेंगे, थ्री पीस सूट में आया करेंगे ताकि आप खुश हो जाए, राइट, क्योंकि आप हमारे पार्टनर हैं। नहीं, मौलाना साहब वही ना दाढ़ी छोटी करते हैं, ठीक है, और ना जो है वो अपना लिबास चेंज करते हैं, राइट, ना काफिरों की तहजीब के मुताबिक जो है वो अपने मदरसों का निज़ाम जो है वो थोड़ा सा ऑल्टर कर देते हैं, कुछ नहीं, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल गलत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो अपर हैंड के साथ उन्होंने मुआहदा, नहीं, इसको अपर हैंड इस तरह से नहीं कहेंगे बल्कि इक्वल टर्म्स के ऊपर मुआहदा कहेंगे, एज ही हैड द डिसीजन टू रिमूव देम फ्रॉम मदीना इफ दे वायोलेटेड द पैक्ट। ये तो जाद वाली तबीयत से आ रहे हैं, ठीक है। तो नहीं, वो तो बाद में जा करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो जब हमला हुआ हमले के अंदर कामयाबी हुई फिर उनको जो है वहां से रिमूव किया ना, ऐसे को थोड़ी क्या वहां उठा करके पहली, तो यानी ये कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड द अपर हैंड व्हेन मेकिंग द पैक्ट विद द ज्यूस एज ही हैड द डिसीजन टू रिमूव देम फ्रॉम मदीना मुनव्वरा इफ दे वायोलेटेड द पैक्ट। नो, नॉट इन द बिगिनिंग, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पोजिशन में शुरू में नहीं थे कि उन्होंने गंदी काम किया तो उठकर उठा करके उनको बाहर निकाल देंगे, बेवकूफी की बात क्यों करते हैं, ठीक है। वो तो बाद में जाकर के जब बाकायदा जिहाद किया उन लोगों के ऊपर अटैक किया और उसके अंदर फिर कामयाबी हुई फिर उन लोगों को बाहर निकाला ना, शुरू में जब मुआहदा कर रहे थे उस वक्त थोड़ी इस पोजीशन में थे कि जरा तुमने जो है वो मुआहदा तोड़ा हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे धक्के मार करके, नहीं, ऐसा कोई थोड़ी था, ठीक है, आप कुछ पूछ रहे हैं?
फ्रांस में वो सभी के गवर्नमेंट यूजुअली जो मुसलमान वो कोशिश कर रहे थे कि तजारत तो उससे ज्यादा बड़ा
जब नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करी तो उस वक्त तजारती अग्रीमेंट जो है वो तोड़ने की बात हो रही थी। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम ने मुशरिकीन के साथ मुआहदा करके दिखा दिया। ठीक है ना, उससे हमें पता चल गया कि अल्लाह ताला ने शिर्क को जो है वो इस किस्म के अग्रीमेंट्स के लिए अल्लाह ताला ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है ना, जबकि नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी जो है ना इसको नहीं एक्सेप्ट किया। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूजिंग योर ओन इंटेलेक्ट, अपना दिमाग इस्तेमाल करके किसी चीज को सही कहना, किसी चीज को गलत कहना, किसी चीज को दादा गलत, किसी को दादा सही, अपने दिमाग से फैसला करना, और एक होता है नबी अलैहिस्सलाम की इत्तबा करना। ठीक है ना, हमें क्या करना है, किसकी इत्तबा करनी है, अपनी अकल की या नबी अलैहिस्सलाम? नबी अलैहिस्सलाम की इत्तबा करनी है ना। ठीक है ना, चाहे हमारी अकल में वो बात समझ में आ रही हो नहीं समझ में आ रही। ठीक है ना, हमारी अकल से अगर हम खाली सोचेंगे, हाँ शिर्क से बड़ा कोई गुनाह ही नहीं, इन शिर्क लज़ुल्म अज़ीम, है ना, तो अकल हमारी कहती है शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी मुशरिक हो उसके साथ कोई ट्रेड अग्रीमेंट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने मुशरिकीन के साथ ट्रेड अग्रीमेंट्स किए, मुशरिकीन के साथ जो है वो सारे काम किए, तो हमें किसको फॉलो करना है, अकल को कि नबी अलैहिस्सलाम को? नबी अलैहिस्सलाम, इसी को तो सबमिशन कहते हैं, अपनी अकल को सबमिट कर देना। ठीक है, अब अगर अकल को फॉलो करना है तो फिर तो मेरा नाम काशिफ है, तो मेरा एक नया दीन होगा जिसका नाम होगा दीन काशिफी। सही है भाई, क्योंकि मैं अपनी अकल को फॉलो करता हूँ, वो दीन मोहम्मदी नहीं होगा फिर उसके बाद, वो दीन काशिफी होगा। ठीक है ना, अगर आपका नाम आपके नाम के हिसाब से आपका दीन होगा, हर बंदे के पास एक अकल है भाई, है ना भाई, आपके पास अकेली की थोड़ी है, इनके पास भी है, आपका दीन मोहम्मदी भी कहला सकते हैं, मोहम्मद नाम ही है इनका। ठीक है ना, और रेहान के भी पास भी एक अकल है भाई, आपके पास भी अकल है कि नहीं है? है, ठीक है ना, आपके पास भी, आपके अब्दुल्ला आपके पास भी अकल है, दीन अब्दुल्ला ही। ठीक है, ये अपनी अकल को फॉलो करेंगे, आप अपनी अकल को फॉलो करेंगे, आप अपनी को फॉलो करेंगे, अपनी को फॉलो करेंगे, माशाल्लाह सबका अपना अपना दीन। ठीक है भाई, दीन इलाही, खैर इलाही तो वो दूसरी चीज थी, नहीं है, तो यही होता है, अकल को फॉलो करना है कि नबी अलैहिस्सलाम को फॉलो करना है। ठीक है ना, दिस इज द डिफरेंस। अच्छा ओ सॉरी, अब्दुल्ला इब्राहिमी, दीन इब्राहिमी हो जाएगा। अच्छा, जज़ाकुमुल्लाह, तो उनके साथ एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने, अच्छा ये जो है ना बेसिकली दुश्मनों के साथ एक एग्रीमेंट हो गया, सेफ्टी का इंतजाम हो गया। ठीक है, कि अब जो है ना ये जो हमारे बॉर्डर्स के ऊपर जो लोग रहते हैं ये हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने अंदर का एग्रीमेंट ये शुरू किया। ठीक है, अंदर के एग्रीमेंट को क्या कहते हैं, किसी को नाम पता है? मीसाक मदीना और मवाखात। ठीक है, मवाखात का मतलब अखू, अखू बना देना, भाई बना देना एक दूसरे का आपस में। ठीक है, तो अब जो मेजर एक इवेंट आ रहा है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर वो है मवाखात मदीना। ठीक है, मीसाक मदीना भी जी, जब दुश्मन एग्रीमेंट तोड़ देगा तो फिर उसके साथ फिर एक ऐलान जंग हो जाएगा, ऐलान जंग हो जाएगा, समझ तो ये नहीं कि अब आप अटैक भी कर देंगे, जंग नहीं हो जाएगी, ऐलान जंग हो जाएगा, नाउ ठीक है वी आर नॉट इन एग्रीमेंट एनीमोर। ठीक है ना, अब जो है ना वो भी अटैक कर सकते हैं, हम भी अटैक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज जो है वो बाद में हुई थी, उन्होंने एग्रीमेंट एक तोड़ दिया था, तो उसके ऊपर फिर जब नबी आपसे के पास इतनी मिलिट्री पावर आ गई थी तो आपसे फिर उसके बाद अटैक भी किया। ठीक है, अच्छा मवाखात जो है ना वो उसका मतलब होता है भाई भाई बनाते। ठीक है, अब ये मवाखात जो मशहूर है वो तो है मदीना मुनव्वरा के अंदर मवाखात। ठीक है, वो आप लोगों ने सुना भी होगा, उसके बारे में अभी और भी बात करेंगे, लेकिन एक मवाखात जो है ना वो मक्का मुकरमा में भी हुई थी। ठीक है, मक्का मुकरमा में आपको पता है कि वो एक बहुत क्लोज और टाइट निट किस्म की एक फैमिली थी। क्या नाम था उस फैमिली का मक्का मुकरमा में, क्या कहते थे? कुरैश। ठीक है ना, قریش کی، بڑا سا جو ایک ٹرائب تھا، اور وہ ایک بڑا اسٹرانگ پاورفل قسم کا ایک 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 لائک سسٹم تھا وہاں پہ، فیملی سسٹم، ٹھیک ہے. اور وہ سارے کے سارے جو تھے وہ کیا کر، ان کا دین کیا تھا؟ شرک، بت پرستی، ٹھیک ہے نا. کعبۃ اللہ میں انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، وہ ان بتوں کو جو ہے وہ پوجتے تھے، اور اس طرح کے بہت سارے گندے کام کرتے تھے، ٹھیک ہے. جب ان میں سے کوئی مسلمان ہو جاتا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مان کر کے، ٹھیک ہے نا، تو پھر وہ جو مشرکین مکہ تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ مٹھائی کی دکان پہ جاتے تھے، وہاں سے لڈو خرید کے لاتے تھے اور منہ میں دیتے تھے، آپ مٹھائی کھائیے، مسلمان ہو گئے، نعرے مارتے تھے تکبیر اللہ اکبر. اب امریکہ میں جائیں، امریکہ میں تو نان مسلم ہوتے ہیں نا میجورٹی، تو کبھی کبھی جو ہے وہ کوئی نان مسلم جو ہے وہ مسلمان ہونے کے لیے آتے تھے مسجد کے اندر، ٹھیک ہے. تو مسجد میں پھر وہ امام صاحب ہوتے تھے، وہ ان کو کلمہ پڑھاتے تھے، ٹھیک ہے نا، کہ اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، ٹھیک ہے. جب وہ کلمہ پڑھ لیتے تھے نا، پھر پوری کی پوری مسجد میں جو مسلمان موجود ہوتے سارے تکبیر اللہ اکبر نعرے لگتے تھے، ٹھیک ہے. عرب بھائی ذرا اور بھی زیادہ جوش کے ساتھ نعرے لگاتے تھے. تو کیا مکہ مکرمہ میں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے تو وہ سارے تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے تھے، ٹھیک ہے. یا لڈو کھلاتے تھے، کیا کرتے تھے بھائی؟ مارتے تھے، ٹھیک ہے نا. وہ مارتے تھے، اور جن کو نہیں مار سکتے تھے ان کو کہتے ہم کٹی، ہمارے ساتھ کٹی ہے نا، نو مور دوستی، ختم، ٹھیک ہے نا. تو اب وہ جو لوگ مسلمان ہوتے تھے ان کی فیملی والے ان کے ساتھ کٹی کر لیتے تھے، ٹھیک ہے بھائی، اور ان کے ساتھ جو ہے نا دشمنی ہو جاتی تھی، اور مار پیٹ بھی ہوتی تھی، اور گالیاں بھی دیتے. یہ ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں نا سیرت کلاس کے اندر، ٹھیک ہے نا، کیا 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 ان لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ اور کس طریقے سے، ٹھیک ہے. اچھا، وہ لوگ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مستقل ظاہر ہے رابطے میں رہتے تھے، تعلق میں رہتے تھے، آپ سے سرم ان کو بتاتے رہتے تھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، لڑائی نہیں کرنی اور غصہ نہیں ہونا، مارنا پیٹنا نہیں ہے، بس صبر کرو، برداشت کرو، ٹھیک ہے. لیکن ان کی فیملی والے جو ہیں وہ تو ان کو ایک طریقے سے ابینڈن ہی کر دیتے تھے، ٹھیک ہے نا، ان کی ہیلپ نہیں کر رہے ہوتے، تمہیں کم کھانا کھلائے بھائی، ہمارے دین کے خلاف ہو گئے ہو تم، تو ہمارے خداؤں کے خلاف ہو گئے ہو تم، تو جو ہے وہ ہماری ہر بات کی جو ہے تم نے انکار کرنا شروع کر دیا، نفی کرنا شروع کر دیا، اب ہم تمہارے ساتھ اچھے کیوں رہے، تم جاؤ الگ ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا. یعنی گھر میں تو وہ آنا جانا ہوتا تھا اکثر لوگوں کا، لیکن دوستی شوستی کوئی نہیں ہوتی تھی، وہ کٹی شٹی والا ہی معاملہ چل رہا ہوتا، دشمنی والا ہی معاملہ چل رہا ہوتا، ٹھیک ہے. تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کے اندر ہی کیا کیا کہ جو لوگ مسلمان ہو کر کے آتے تھے نا، تو ان میں کچھ لوگ ذرا امیر بھی ہوتے تھے اور کچھ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ غریب بھی ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا. کچھ لوگ فزیکلی پاورفل ہوتے تھے، کچھ لوگ جو ہے وہ فزیکلی بڑا کمزور سے بھی ہوتے تھے، ٹھیک ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا کوشش کری کہ جو مضبوط ہوتے ہیں ان کو اور کسی کمزور کو آپس میں بھائی بنا دو، ٹھیک ہے، اور کسی امیر کو کسی غریب کے ساتھ بھائی بنا دو، ٹھیک ہے نا. تو یہ مواخات جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں ہی کر لی تھی، ٹھیک ہے. کسی کی پناہ میں دے دیا، کسی کے ساتھ آپ نے ان کو جوڑ دیا کہ بھئی آپ ایک دوسرے کی مدد کریں، واچ ایچ ادرز بیکس، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کے خلاف کوئی کر رہا ہے تو دوسرا بندہ آپ کو واچ کرے، تو آپ اس یعنی اسی طرح کا آپ کا ایک اگریمنٹ، لیکن یہ ایمان والا اگریمنٹ تھا، ٹھیک ہے، ایمان کی بیسس پہ، کیونکہ دونوں مسلمان ہوتے تھے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کے نام کتاب کے اندر لکھے ہیں، وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جو مواخات ہوئی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا تھا سوائے ان کے ابا کے، بھائی باقی سب مسلمان ہو گئے تھے. تو یہ ایک گھرانہ یعنی ایک اسٹیبلش قسم کا یہ گھرانہ تھا، ٹھیک ہے، سارے کے سارے مسلمان، سارے کے سارے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ایک اکیلے ہی سے ہے نا، وہ بس ایسے ہی بس نوجوان تھے، 25 سال ان کی عمر تھی جب وہ مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے نا. تو ان کو تو تھے بڑے جذباتی لیکن تھے اکیلے، ٹھیک ہے نا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے آپس میں بھائی چارہ کروا دیا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ان دونوں کی کوئی وجوہات تھی. زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، یہ بڑے اسٹیبلشڈ ٹریڈر تھے، تاجر تھے، ان کی مواخات کروا دی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بالکل شروع کے مسلمانوں میں سے تھے، لیکن بڑے کمزور، پتلے، دبلے، اور جو ہے وہ بکریاں چرانے والے تھے، غریب تھے، ہے نا. तो जुबैर बिन अवाम ने रतान को जो है वो अब्दुल्ला बिन मसूद रतान का भाई बना दिया, ठीक है। और उबैदा बिन हारिस को बिलाल बिन रबा, मसअब बिन उमैर रतान, ये भी बड़े ऐसी थे, उनको यानी घर वालों ने इनको बाहर निकाल दिया, मसअब बिन उमैर रतान को। तो इनको जो है ना वो साद बिन अबी वकास रतान, बड़े इस्टेब्लिश किस्म के पक्के जबरदस्त स्ट्रॉन्ग किस्म के मुसलमान, कल बात भी हुई थी ना, उन्होंने पहला बंदा जख्मी किया था इस्लाम के नाम पर, ठीक है। तो साद बिन अबी वकास रतान के साथ मसअब बिन उमैर रतान को भाई बना दिया। अब उबैदा रतान ये भी बड़े वेल इस्टेब्लिश किस्म के मुसलमान थे, इनको सालिम मौला अबी हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि गुलाम थे, अबू हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के गुलाम, बड़े कमजोर से, इनका आपस में भाई भाईचारा बना दिया। सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु और तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु, इन दोनों को भाई बना दिया, ठीक है ना। अब बिल्कुल शुरू की बात है ये, तो अब रह गए एक अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, है ना। अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे वो तो बच्चे थे जब वो मुसलमान हुए, 8 साल के थे गालिबन, ठीक है। तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो है उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इन सबको तो भाई बना दिया, मेरा तो कोई भाई नहीं बनाया। तो क्या जवाब दिया, इनके साथ बात हो चुकी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली मैं तुम्हारा भाई, ठीक है। भाई थे भी, बायोलॉजिकली भी कजन थे, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली मैं तुम्हारा भाई, ठीक है। तो ये मवाखात थी जो कि मक्का मुकरमा में हुई, सही है। आप कुछ पूछ रहे थे, आपको हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम नहीं है, मुझे नहीं पता कि उनको किसके साथ भाई बनाया, जो अभी नाम थे वो भी आपके सामने बता रहे, ठीक। आप कुछ कह रहे हैं क्या, ये हिजरत से पहले की बात है, मक्का मुकर्रमा की बात है, ठीक जी। हाँ, बड़ा अच्छा आपने चीज़, बहुत अच्छी बात याद दिलाई। इनके सवाल का मजीद जवाब भी है, और भी जवाब इनके लिए जो कहा था ना, अपर हैंड के साथ ही आप काफिरों के साथ मुलाकात कर सकते हैं। व्हाट अबाउट सुलह हुदैबिया, सुलह हुदैबिया तो नबी अलैहिस्सलाम ने काफिरों के सामने झुक करके सुलह करी थी, इसी पर तो मुसलमान परेशान थे कि क्यों आपसे तुमने ऐसी सुलह करी, ठीक है। तो यहूदियों के साथ तो इक्वल टर्म्स के ऊपर सुलह करी, और कुफारे मक्का के साथ सुलह हुदैबिया के अंदर तो ऐसी सुलह थी कि जिसके अंदर ऐसा लग रहा था कि कुफार का अपर हैंड है और नबी अलैहिस्सलाम मुसलमानों का जो है वो लोअर हैंड है, बजाहिर दीन तो उसमें भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ था, राइट। ये क्यों थोड़ी कि नहीं हम अपने दीन में से कुछ चीजें निकाल देते हैं, आप अपने दीन में से कुछ चीजें चेंज कर दें, नहीं, ये तो उस वक्त भी नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन पोलिटिकली और जिसको कहेंगे आप सोशली स्पीकिंग, दे हैड द अपर हैंड, ठीक है, क्योंकि अगर वहां से कोई भाग कर आएगा ये वापस कर देंगे, यहां से कोई भाग के जाएगा वो वापस करेंगे, है ना भाई। तो जो ऊपर वाला होता है ना, ये उसका इज्तिहाद कहलाता है, ठीक है ना। नबी अलैहिस्सलाम को तो वैसे भी वही आती थी, लेकिन आज के दौर में अगर कोई मुसलमानों का सही जो लीडर अगर हुआ या बड़ा कोई आलिम हुआ, वो अगर काफिरों के साथ कोई एग्रीमेंट कर रहा है, वो अपने इज्तिहाद के मुताबिक इवन झुक करके भी एग्रीमेंट कर सकता है, ये भी नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत से साबित है। झुक करके भी आप एग्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, दीन को नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकते, लेकिन दुनियावी एतबार से आप चीजें कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, ठीक है। मुसलमानों का दीन का कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, दुनिया का कॉम्प्रोमाइज हुआ, ठीक है ना। और बड़े मकसद की खातिर, बड़े गेन की खातिर दुनिया की चीजों को कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, ठीक है ना। और फिर बाद में पता चला ना कि सुलह हुदैबिया में बज़ाहिर एक मुसलमानों की हार नजर आ रही थी, शिकस्त नजर आ रही थी, लेकिन मच लेटर वो बहुत बड़ी फतह मुबीन कहलाई सुलह हुदैबिया को, है मुसलमानों को तो नहीं पता था ना ये बात, नबी अलैहिस्सलाम को तो पता थी, तो नबी अलैहिस्सलाम ने जो अपना काम किया वो तो अपनी बशारत की बुनियाद पर किया, मुसलमानों को सामने को थोड़ी बशारत आई थी, मुसलमानों ने तो ट्रस्ट करना था नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर, जी वी ट्रस्ट व्हाट एवर यू डू, मतलब आप बज़ाहिर अच्छी काम करें, हमें अच्छा लग रहा हो फिर भी हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप बज़ाहिर कोई ऐसा काम करें जो हमारे समझ में नहीं आ रही, हमारी अकल में नहीं आ रही, हम फिर भी आप ही के साथ रहें, ठीक है ना। ये होता है ईमान, सही है जी। हाँ, उन्होंने तोड़ दी थी, ठीक है, चलो वो तो अभी बहुत आगे जाएगी, अभी तो मवाखात मदीना की बात करते हैं कि फिर ना नबी अलैहिस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा में हिजरत के 5 महीनों के बाद फिर किसी तरह की मुलाकात मदीना मुनव्वरा में भी करी, और वो एक एक इवेंट इस तरह का था कि एक सहाबी थे हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनके मकान के ऊपर तकरीबन 90 सहाबा थे, 45 मुहाजरीन और 45 अंसार, ठीक है। तो इन सबको ना एक एक को एक एक के साथ जो है वो भाई 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 बना दिया, और यहाँ पर भी फिर अबू बकर सिद्दीक उमर बिन खत्ताब को, यानी ये फिर मुहाजरीन और अंसार के दरमियान, ठीक है, यानी मक्का मुकरमा से आए हुए लोग और मदीना मुनव्वरा के जो पुराने लोग थे उनके दरमियान नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुवाखात फरमा दी। तो 45 की माशाल्लाह इन्होंने 35 के नाम तो इधर लिखे हुए हैं, तो अब सबको पढ़ेंगे तो वैसे टाइम खत्म हो गया। जी हाँ, वो अब खत्म हो गए, अब यहाँ पर आए तो अब नए सिरे से, क्योंकि वो मक्का मुकरमा के कॉन्टेक्स में था, अब ये मदीना मुनव्वरा के माहौल के हिसाब से, यहाँ की जरूरियात के हिसाब से था, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मुलाकात हुई ना, तो अजीब, दुनिया ने ऐसी चीज पहले कभी देखी ही नहीं थी, ठीक है ना, यानी नॉन मुस्लिम्स टू नॉन मुस्लिम्स, इवन मुस्लिम्स हैड नेवर विटनेस सच सच अ थिंग बिफोर, ठीक है ना। तो ये जो मुलाकात है ना, ये नबियों में सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों में करवाई, कभी किसी नबी ने इस तरीके से दोनों दो बंदों को पकड़ के भाई नहीं बनाया था, ठीक है। ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट होता है कि हाँ भी मुसलमान जो है वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं वगैरह, लेकिन ऐसे नहीं, एक बंदा करके मौका, ठीक है। अब जो हुआ ना, तो उसके बाद मुहाजरीन तो अपना घर बार और सब कुछ छोड़ करके आए थे, तो बहुत बुरे हालात में थे, ठीक है। इनको जमीनें तो थोड़ी बहुत फिर भी अलॉट हो गई थी, प्लॉट्स अलॉट हो गए थे मदीना मुनव्वरा के, आप यहाँ पे घर बना लें, आप यहाँ पे घर बना लें, यहाँ पे घर बना लें, जिनकी फैमिलीज थी, और जिनकी फैमिलीज नहीं थी वो किधर रहते थे, मस्जिद नबवी के अंदर असहाब सुफा वाली जगह के ऊपर रहते थे, ठीक है ना। अच्छा, अब अंसार जो कि पहले से एस्टैब्लिश थे, उनके बाग भी थे, उनके घर भी थे, उनकी फैमिलीज भी थी, तो उन्होंने ना फिर अपने अपने भाई को बहुत जबरदस्त तरीके से सपोर्ट किया, और अपना जो उनके पास पैसा था वो भी आधा आधा कर, ठीक है ना, आधा जो है तुम्हारा है, आधा मेरे पास, ठीक है ना, और हत्ता कि अपनी जमीनें भी आधी आधी कर दी, तुम ये जमीन आधी आपकी है, ये जमीन आधी मेरी है, अब आप इसके ऊपर जो है वो बाग उगाना चाहें, जो करना चाहें, ठीक है। हत्ता कि एक अंसारी साहब ऐसे थे जो कि माशाल्लाह बहुत ज्यादा है ना जज्बे के अंदर और ज्यादा आगे बढ़ गए, उनकी जो है ना वो 2 बीवियां थी, ठीक है, वो इतने जज्बात में आ गए, ये एक ही थे, ठीक है, इतने जज्बात में आ गए कि उन्होंने अपने वाले जो अंसारी वो मुहाजर भाई थे ना, उनसे कहा कि भाई आपकी शादी नहीं हुई हुई है ना, तो मैं ऐसा करता हूँ अपनी एक बीवी को छोड़ देता हूँ, तो आप मेरी बीवी से, जब वो जो इद्दत का टाइम गुजर जाएगा तो फिर आप मेरी बीवी से निकाह कर लिएगा, ठीक है ना, यानी आपको हेल्प करने के लिए आपके घर के अंदर आपके साथ कोई बीवी आपके नहीं है, आप मेरी बीवी, इतना वो जज्बात ही हो गए, ठीक है ना। लेकिन जाहिर है ये जज्बात में आके उन्होंने एक बात कही थी, तो महाजर साहब ही ने कहा नहीं ठीक है, इट्स ओके, सही, आप अपनी बीवी अपने पास ही रखें, सही, मैं कर लूंगा, जब मेरी अल्लाह ताला ने जब भी शादी का टाइम रखा होगा मैं कर लूंगा अपनी शादी, ठीक है। यानी इतना ज्यादा ये लोग जो है ना वो नबी अलैहिस्सलाम की कही हुई बात के ऊपर अमल करने वाले थे, ठीक है। अच्छा, एक और बात जो जरा बड़ों की क्लास में पिछले दिनों हुई थी, आंटियों की क्लास में, तो वो आपके सामने बस जिक्र कर देते हैं कि देखें, ये लोग जो मक्का मुकरमा से आए थे हिजरत करके, ठीक है ना, तो इन्होंने अल्लाह की खातिर किस चीज को छोड़ा था, अपने शहर को छोड़ा था, और क्या चीज छोड़ी थी, अपने घरों को छोड़ा था, ठीक है, और क्या चीज छोड़ी, अपने घर वालों को, अपने फैमिलीज को छोड़ा था, ठीक है ना। तो जब इन्होंने अल्लाह की खातिर और नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म के ऊपर, ठीक है ना, अपने घरों को छोड़ा, अपनी जगहों को छोड़ा, हत्ता कि अपने खानदानों को छोड़ा, तो इनको अल्लाह ताला ने नए घर भी अता फरमा दिए, ठीक है ना, और इनको जो है वो नई फैमिलीज भी अता फरमा दी, ठीक है ना। ऐसे ही होता है कि जब भी कोई अल्लाह की खातिर चीजों को छोड़ता है ना, ठीक है ना, और नबी या नबी के किसी नुमाइंदे की बात मानकर, क्योंकि ऐसे भी तो होता है ना कि हम जरा गुस्से के तेज होते हैं, ठीक है ना, तो गुस्से में आकर के जो है ना वो हम जब दीनदार मुसलमान बन जाते हैं, अब उससे में आके सबसे लड़ाई कर ली, ठीक है ना, और खुद ही जो है वो छोड़ छाड़ करके भाग गए, सहाबा ऐसे नहीं करते थे, गुस्से में आकर के लड़ाई करके छोड़ छाड़ के नहीं भाग जाते थे, बल्कि सहाबा जो है ना वो ये बातें नबी अलैहिस्सलाम से पूछते रहते थे, हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है ना। इन्होंने शुरू में नहीं छोड़ा, इन्होंने तो छोड़ा उस वक्त जब नबी अलैहिस्सलाम ने इनको कहा कि अब आप छोड़ें, उससे पहले तो किसी ने नहीं छोड़ा ना, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब कोई अल्लाह की खातिर छोड़ता है पूछ करके गाइडेंस के साथ, तब अल्लाह ताला उसको अल्टरनेटिव दिया था, ठीक है ना। जैसे कि सहाबा इकराम को मदीना मुनव्वरा में अल्लाह ताला ने अल्टरनेटिव फैमिलीज अता फरमा, घर भी अता फरमा, ठीक है। अच्छा, एक आखिरी बात करके हम आगे क्लास खत्म कर देते हैं, वो ये कि जो सहाबा थे ना, तो मुहाजिर सहाबा, ठीक है, उन्होंने जब ये देखा कि अंसार जो सहाबा हैं मदीना मुनव्वरा के, उन्होंने इतना ज्यादा हमारी खातिर अपनी फैमिलीज को भी डिवाइड करने के लिए तैयार हो गए, घरों को भी डिवाइड कर दिया, और जो है वो अपने माल को भी हमें आधा दे दिया, ठीक है। तो अब ये बड़े हैरान हुए कि यार ऐसे भी लोग दुनिया के अंदर होते हैं, ऐसे भी कुर्बानी देने वाले लोग होते हैं। तो ये लोग जो है ना मुहाजिर, ये आए नबी अलैहिस्सलाम के पास और आकर के उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग जिस कौम में आ गए हैं ना, यहाँ पर अंसारी की जो कौम है, तो हमने इनसे बढ़कर के कोई हमदर्द देखा ही नहीं आज तक, ठीक है ना। इनसे बढ़कर के ना हमने कोई हमदर्द देखा, ना कोई मुखलिस देखा, ना कोई वफा शार देखा, कि अपना सब कुछ है उन्होंने हमें दे दिया, राइट। हालांकि क्या रिलेशनशिप है हमारी इनके साथ, राइट, ना तो हमारी कोई फैमिली रिलेशनशिप है, ना कोई हमारी बिजनेस रिलेशनशिप है, राइट, ना कोई हमारी जो है वो कॉलेज रिलेशन, हम वी वेंट टू द कॉलेज टुगेदर, है ना, हमने ये सेम स्कूल में पढ़े थे, इस वजह से इतनी मोहब्बत है, राइट, या हम सेम जो है वो जगह काम करते हैं, इस वजह से एक दूसरे से थिंग, कोई चीज नहीं है हमारी इन दोनों के साथ कॉमन, सिवाय किस चीज के कॉमन, क्या चीज कॉमन थी, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम, ठीक है ना। यानी एक आइडिया, एक बिलीफ सिस्टम, दीन क्या है, एक बिलीफ है ना, इस बिलीफ की वजह से इन्होंने अपना फिजिकल चीज, सारी फिजिकल चीजें जो है हमारे हवाले कर दी। तो हम तो हैरान है कि दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं। तो इन्होंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें ये फिक्र हो रही है, अब इन लोगों को देख करके हमें ये फिक्र हो रही है कि सारा का सारा जो सवाब है ना वो ये लोग ले जाएंगे, हमें तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये बात उन्होंने क्यों कही, सारा का सारा सवाब जो है वो ये लोग ले जाएंगे, हमें क्यों नहीं मिलेगा, क्यों भाई, क्या ये लोग नमाज नहीं पढ़ते थे, ये भाई मुहाजिर जो आए थे तो अंसार ने इनको पैसे दे दिए थे, राइट, अंसार ने इनको घर दे दिए थे, प्लॉट दे दिए थे, ठीक है ना। तो मुहाजिरीन ने ये बात कही था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर के कि हमें ये फिक्र हो गई है कि सारा सवाब जो है ना वो ये अंसार ले जाएंगे, हमें तो कुछ नहीं मिलेगा, क्यों ऐसी बात उन्होंने क्यों कही। सवाल ये है कि नेकी काम तो मुहाजिर भी करते थे, ठीक है, तो उनको ये फिक्र क्यों हो गए कि सारा सवाब जो है वो अंसार ले जाएंगे, क्यों, क्योंकि जो 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 मुहाजरीन थे ना, वो जो नेकी के काम करते थे ना, ठीक है, वो जो नमाजें पढ़ते थे, वो जो कोई भी काम करते थे नेकी का, तो अंसार जो थे ना वो एक्चुअली इनको मदद कर रहे थे, इनकी नेकियों का सबब बन रहे थे, कॉज बन रहे थे। अगर इनके पास खाने को नहीं होता कुछ, तो क्या ये नमाजें पढ़ सकते थे, ये तो पेट पकड़ के बैठे हुए होते हैं, अल्लाह मुझे बड़ी भूख लग रही है पेट में इतना दर्द होता है ना जब भूख लगती है ना बहुत ज्यादा, दो तीन दिन तक आपके पास खाने को नहीं होता, फिर नमाजें नहीं पड़ी जाती, फिर उसके बाद बात समझ आ रही खूब, एक तो आपको तीन दिन का रोजा रखवाए फिर आप नमाजें पढ़ के दिखाइएगा, आपसे नमाजें नहीं पढ़ी जाएंगी, ठीक है। जब इतना ज्यादा परेशान होता है ना इंसान, घर भी नहीं है, खाने को भी नहीं है, और करने को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं, कैसे कमाऊं, बच्चे रो रहे हैं और बच्चे जो है परेशान हो रहे हैं, ये हो रहा है, नमाजें शमाजें कोई नहीं पढ़ता, फिर उसके बाद पढ़ी नहीं जा सकती, फिर आप जो है वो हर वक्त ही पागल हो के मारे मारे फिरते रहेंगे भाई, किसी तरीके से खाने को आए किसी तरीके से, राइट। तो हम जो नमाजें पढ़ रहे हैं, ये नमाजें हम इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि वो हमें पैसे दे रहे हैं, ठीक है ना, वो उन्होंने हमें घर दे दिया है। अगर घर ना होता तो हम कहाँ से तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे होते, हम कहाँ से जो है नेकी का काम कर रहे होते, ठीक है ना। तो वो चूंकि सबब बन रहे हैं ना हमारी नेकियों का, तो अब इनके दिल में ये एक सवाल आया, ठीक है ना, एक तालिबे इल्माना सवाल, घटिया ना देखें अभी आप, ठीक है, एक इनके जहन में एक सवाल आया कि भाई इसका मतलब तो यह है कि हमने नबी अलैहिस्सलाम से सुना था कि जो जिसकी नेकी का सबब बनेगा ना उसको उसकी नेकी का सवाब मिलेगा। इनके जहन में सवाल ये आ गया, ये एक डाउट आ गया कि हो सकता है कि इसका मतलब ये भी हो कि सारा उन्हीं को मिलेगा, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी हमारा सवाब भी उन्हीं को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस बात की ना मुहाजिर साहबा को फिक्र हो गई, ठीक है। अब पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया, एक ऐसा जवाब है कि जो मैं सोच रहा हूँ कि अभी आपको बताऊं या अगली क्लास में बताऊं। इतना जबरदस्त जवाब दिया आपने सर, और इतना अहम जवाब दिया आपने सर, ठीक है सर, जल्दी से बता देते हैं बाकी शायद अगली दफा बात कर लें। आप सर ने फरमाया कि नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि सारा सवाब तुम्हारा जो है वो इनको मिल जाए और तुम्हें कुछ भी ना मिले, ठीक है ना, क्योंकि ये तुम्हारी नेकियों की वजह बन रहा है, इन्होंने तुम्हें घर दिया है, खाना दिया है, सब कुछ, ठीक है। आपने फरमाया कि नहीं, जब तक तुम उनके लिए दुआ करते रहोगे, जब तक तुम इनके लिए दुआ करते रहोगे, यानी दुआ का एहसान दिरहमो दीनार के एहसान से कम नहीं बल्कि कुछ ज्यादा ही है। यानी इन्होंने जो तुम्हें घर दे दिया, इन्होंने जो तुम्हें पैसे दे दिए, इन्होंने जो तुम्हारी मदद कर दी ना, ठीक है ना, तुमने जो इनके लिए दुआ करी है ना, इस दुआ की वैल्यू उन तमाम चीजों से ज्यादा है। तुम इनको जो दुआ देते हो ना, ठीक है ना, इसकी वैल्यू उन तमाम चीजों से ज्यादा है। फरमाया जो दिरहम, चंद दिरहम दिए ना, 4, 5, 10, कितने दिरहम दिए, ठीक है, तो ये जो दिरहम दिए ना, तो दिरहम और दिनार तो दरकिनार, यानी इनको तो तुम फॉरगेट अबाउट दें, अगर ये तमाम दुनिया के खजाने भी तराजू के एक पलड़े में रख के तुम्हें दे देना, एक बैलेंस है ना, एक तराजू हो उसके एक पलड़े में ये सारे के सारे दुनिया के खजाने रख दें, और दूसरे तराजू के बैलेंस के अंदर एक मुखलिस दुआ, एक दुआ जो कि तुमने इखलास के साथ दिल से जो है ना वो इनको दी है, तो उस दुआ का पलड़ा भारी हो जाएगा, ठीक है, उस एक मुखलिसाना दुआ का पलड़ा भारी हो जाएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिर्फ एक मुखलिसाना दुआ को तुम दूसरे पलड़े में रखकर तोल दो, तो इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह यही दुआ का पल्ला भारी रहेगा, ठीक है ना। अब अजीब बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंशाल्लाह, इंशाल्लाह का क्या मतलब होता है भाई, अगर अल्लाह ने चाह, ठीक है, तो आप ने इंशाल्लाह फरमाया, सुम्मा इंशाल्लाह भी फरमाया, तो इंशाल्लाह का तर्जुमा होता है अगर अल्लाह ने चाह, तो नबी सल्लल्लाहु को बात पता थी कि इंशाल्लाह का मतलब क्या होता है, अगर अल्लाह ने चाह, ठीक है ना। तो नबी अलैहिस्सलाम ने एक और बात कही, ठीक है, कि मैंने अभी जो तुम्हें इंशाल्लाह बोला है ना, इसका मतलब ये नहीं है अगर अल्लाह ने चाह, ठीक, ये वाले जो मैंने अभी इंशाल्लाह बोला है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर अल्लाह ने चाह, क्योंकि इसके अंदर अगर की बात ही नहीं है कोई, ये कंफर्म्ड है कि मुखलिस दुआ जो है वो तमाम एहसानात से ज्यादा भारी है, ये कंफर्म बात है। तो फिर मैंने इंशाल्लाह क्यों कहा है, मैंने इंशाल्लाह तालीकन नहीं कहा बल्कि तअद्दुबन कहा है और तबर्रुकन कहा है, तबर्रुकन और तअद्दुबन मैंने इसलिए इंशाल्लाह कहा है, मैंने तालीकन कहा ही नहीं, यानी अगर के मानी में मैंने नहीं कहा। अब ये तादुबन और ये सारी बात इंशाल्लाह की जाएगा, बहुत देर हो जाएगी, तो 20 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, तो ठीक है, यानी कंफर्म बात है जी। अगर मदीना वाले उनके लिए दुआ करें, मदीना वाले जो उनके लिए दुआ करेंगे तो सही बात है माशाल्लाह, ठीक है, मदीना वाले उनके लिए जो दुआ कर रहे हैं ना वो तो दुआ करेंगे, लेकिन इनके एहसान के बदले में वो दुआ नहीं कर रहे ना, ठीक है ना। हाँ ये है कि इनके दुआ के बदले में हुआ, और दुआ कर कि आपने हमारे लिए दुआ कर लिया तो हम आपके बदले में आपको और दुआ कर रहे हैं। ये एक बड़ा मजे का टॉपिक है इसके ऊपर, वैसे बड़ा मजा जबरदस्त किस्म का एक वाकया। ठीक है वो इंशाल्लाह आगे होगा। ठीक है चलें अपन क्लास खत्म कर देते हैं। वाफ अल्हम्दुलिल्लाह।
Recordings.